हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा और सारा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए राणा मेंशन के गार्डन में आई थी। वहाँ कृषा की मिस्टर हर्षवर्धन राणा के साथ बहस हो गई थी। गुस्से में हर्षवर्धन जी ने कृषा को काफी कुछ सुना दिया। उनमें से कुछ बातें ऐसी थी जिनके बारे में कृषा को पता तक नहीं था, जैसे कि हरलीन का उसके पापा के साथ रिश्ता तय होने के बावजूद उसके पापा का उसकी मॉम के साथ शादी करना। हर्षवर्धन जी की बेरुखी देखकर कृषा को बहुत बुरा लगा, साथ ही उन्होंने उसकी मॉम को काफी भला बुरा भी कहा था। कृषा रोते हुए अंदर आ रही थी और गलती से मान्या राणा से टकरा गई। मान्या ने गुस्से में कृषा का हाथ पकड़कर मोड़ा और कहा, युग की वाइफ हो इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ बदतमीजी करोगी। वैसे भी तुम्हें यहाँ भेजकर उसने साबित कर दिया है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। मान्या की बात सुनकर गुस्से में युग की आंखें सर्द हो गई। उसने सख्त आवाज में कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कृष को दर्द देने की। बोलते हुए युग ने तुरंत हरलीन को कॉल पर कनेक्ट किया। हरलीन के कॉल रिसीव करते ही युग गुस्से में बोला, बुआ मैंने अपनी वाइफ को आपके भरोसे वहाँ छोड़ा है, आप ध्यान नहीं रख सकती तो बता दीजिए, मैं उसे वहाँ से ले जाऊँगा। युग की बातों से हरलीन समझ गई थी कि जरूर घर में कृषा के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है। वो हैरानी से बोली, मैंने आखिरी बार उसे रूम में छोड़ा था, कहाँ है युगवा? बिलीव मी मैं उसका पूरा ध्यान रख रही हूँ। मुझे अच्छे से दिख रहा है बुआ, आप उसका कितने अच्छे से ध्यान रख रही हो। तभी हर कोई ऐरा गैरा जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ रहा है। वैसे गार्डन एरिया में है वो, युग ने जवाब दिया और उसी वक्त कॉल कट कर दिया। हरलीन दौड़कर गार्डन एरिया की तरफ गई। उसने देखा कि मान्या ने अभी तक कृषा का हाथ पकड़ रखा है और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में सारा आ गई थी। कृषा का हाथ छुड़ाने के लिए सारा ने मान्या को इतनी जोर से दूर धक्का दिया था कि वो नीचे जमीन पर गिरी थी। कृषा के हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए सारा ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे सहला रही थी। कृषा का हाथ पकड़े हुए सारा ने मान्या की तरफ देखकर गुस्से में कहा, आई वॉर्न यू, आगे से इससे दूर रहना, यू ब्लडी बिच। अगर गलती से भी इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो इस बार धक्का देने के बजाय तुम्हारा हाथ तोड़कर रख दूंगी। सारा ने मान्या को काफी अच्छे से जवाब दे दिया था। तब तक हरलीन भी उसके पास आ गई थी। हरलीन ने कृषा का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही हो, अंदर चलो मैं तुम्हें क्रेप बैंडेज लगा देती हूँ। जाने से पहले उसने मान्या की तरफ देख कर कहा, लगता है तुम भूल रही हो कि युग राणा कौन है। एक बात याद रखना, उसे दूसरों को उसकी औकात याद दिलाना काफी अच्छे से आता है। हरलीन की बातों का मान्या पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरे एटीट्यूड से कहा, इन दोनों लड़कियों की आदत हो गई है बेवजह तमाशा लगाने की। युग का नाम लेकर मुझे मत डराओ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी लाइफ मस्त लंदन में पहले की तरह जी रहा है और इसे यहाँ वापस भेज दिया। बोलते हुए वो खड़ी हो गई और उसकी तरफ तीखी नजरों से देख रही थी। हरलीन अच्छे से जानती थी मान्या को कैसे लाइन पर लाना है। उसने मान्या की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो, अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। वैसे मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी और मेरे पास युग का कॉल आया था। अब कॉल क्यों आया था ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। युग भले ही लंदन में हो लेकिन यहाँ कौन क्या करता है ये उससे ना तो पहले छुपा था और ना ही अब। उम्मीद है आगे से तुम ऐसी कोई बचकानी हरकत नहीं करोगी जिससे कृषा को नुकसान पहुँचे। मान्या को जवाब देने के बाद हरलीन ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। कृषा की हरलीन की बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई कि युग को कैसे पता चला होगा कि मान्या उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है। हरलीन के कमरे की तरफ जाते हुए कृषा ने धीरे से पूछा, क्या युग 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रखता है? कृषा अनकंफर्टेबल ना हो जाए इसलिए हरलीन ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है कृषा, किसी काम के चलते वो फुटेज देख रहा था और अनजाने में उसे वो सब दिखाई दे गया। बातें करते हुए वो हरलीन के कमरे में पहुंच चुके थे। अंदर आते ही हरलीन ने कृषा के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाया और फिर उसे बैंडेज बांध दिया। कृषा ने आसानी से हरलीन की बात पर यकीन कर लिया था। सारा भी उन्हीं के साथ थी और उसे हरलीन की बात पर यकीन नहीं हुआ। गार्डन में जो भी हुआ उसके बाद सारा समझ गई थी कि युग कभी भी डायरेक्ट कृषा को प्रोटेक्ट नहीं करेगा और वो हरलीन का ही सहारा लेगा। ऐसे में वो कृषा को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। सारा ने हरलीन की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, बुआ क्या मैं शब्द के साथ यहाँ रह सकती हूँ? तुम पहले से ही शब्द के साथ रह रही हो, यहाँ नहीं तो उसके घर में। यहाँ शब्द के साथ रहने के लिए बिना शादी के डैडी जी तुम्हें कभी परमिशन नहीं देंगे, हरलीन ने मना करते हुए कहा। हर्षवर्धन राणा अंडरवर्ल्ड में काम करते हुए भी वैल्यूज को बहुत मानते थे। हर्षवर्धन सारा को मना करते उससे पहले हरलीन ने उनकी तरफ से इनकार कर दिया था। हरलीन के मना करने पर सारा का चेहरा उतर गया था। कृषा भी यही चाहती थी कि सारा उसके साथ रहे, इसलिए उसने हरलीन से कहा, सारा शब्द के साथ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मेरे साथ तो रह सकती है बुआ, वो मेरी बहन है, इस नाते सारा को यहाँ रहने से कोई मना नहीं करेगा, प्लीज उसे यहाँ रहने दीजिए। कृषा युग से इस बारे में बात नहीं की थी, फिर भी कृषा का दिल रखने के लिए उसने सारा को वहाँ रुकने की परमिशन दे दी थी। इससे सारा और कृषा दोनों ही खुश हो गई। पूरे दो दिनों बाद हरलीन ने कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी तो उसे भी अच्छा लग रहा था। पिया की मौत को पूरे 5 दिन बीत चुके थे और इस बीच उसकी अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई सभी क्रियाएं पूरी हो चुकी थी। पिया के मरने के बाद मोहना की हालत पागलों जैसी हो गई थी, तो वहीं तेज सिंह राणावत को किसी भी तरह युग से बदला लेना था। तेज सिंह राणावत युग की शख्सियत से अनजान था, इसलिए वो मुंबई के ही एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से मिला। उसके हिसाब से युग का सारा बिजनेस मुंबई में था, तो उसे बर्बाद करने के लिए वो आदमी उसकी मदद कर सकता था। तेज सिंह राणावत एक क्लब के प्राइवेट रूम में उस आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। मुंबई में उसका काफी बोलबाला था और सभी बिजनेसमैन उससे डरते थे। तेज सिंह राणावत उसका वेट कर रहा था, तभी वो अपने गार्ड्स के साथ वहां आया। सलाम जफर भाई, मैं कब से आप ही के आने का इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही तेज सिंह राणावत खड़ा हो गया और उससे जाकर हाथ मिलाया। जफर सिद्दीकी वही आदमी था जिससे वो मिलने आया था। वो उम्र में लगभग 55 साल के करीब था। उसका लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर और माथे पर एक बड़ा सा चोट का निशान और बड़ी बड़ी आँखें थी। वो देखने में ही काफी खतरनाक लग रहा था। जफर सिद्दीकी तेज सिंह के सामने जाकर बैठ गया। उसने इशारे से तेज सिंह राणावत को बैठने के लिए कहा और फिर हाथ में बियर का ग्लास लेकर बोला, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम इतनी दूर से मिलने यहाँ तक आए? मेरा छोटा भाई तुम्हारा सब काम देख तो रहा है। जैसे ही जफर सिद्दीकी ने कहा, उसके पास खड़े आदमी ने उसके कान के पास आकर कुछ कहा। पूरी बात सुनने के बाद जफर सिद्दीकी ने एक नज़र तेज सिंह की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी बेटी के जाने का अफसोस है, सुना है कोई घर में घुसकर मारकर चला गया, इतनी औकात किसकी हो गई? जफर सिद्दीकी के बात करने पर तेज सिंह की आंखों में एक बार फिर से वो मंजर घूम गया जब युग ने जबरदस्ती पिया को खाना खिलाया था। सब याद आते ही तेज सिंह की आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने दबी लेकिन सख्त आवाज में कहा, युग राणा नाम है उसका, वो अपने आप को डेविल कहता है। अरे भाड़ में गया वो डेविल और उसके पैसे, वो कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, मुझे कल तक उसकी लाश अपने आंगन में चाहिए, उसके लिए मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही तेज सिंह ने अपने मुंह से डेविल का नाम लिया, उन सब के चेहरे के भाव बिगड़ गए। जिस आदमी ने जफर सिद्दीकी के कान में कुछ कहा था, उसने अपने आईपैड में कुछ सर्च किया और स्क्रीन तेज सिंह के सामने कर दी। उस आदमी ने तेज सिंह से पूछा, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? स्क्रीन पर युग की फोटो थी। तेज सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ ये वही है। अच्छा है आप इसे जानते हो, आपको इसे ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, मुझे ये आदमी जिंदा नहीं चाहिए, तेज सिंह बोल रहा था। इस बीच उस आदमी ने स्क्रीन को जफर सिद्दीकी के सामने किया। युग की फोटो देखने के बाद जफर सिद्दीकी ने कहा, देखो राणावत, बात ये है कि ये तेरे बाप का भी बाप है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तेरे घर आ कैसे गया। उनकी बातें सुनकर तेज सिंह राणावत को हैरानी हो रही थी। उसने फिर सारी कहानी बता दी कि कैसे उसकी बेटी पिया ने युग को देखते ही पहली नज़र में पसंद कर लिया था और फिर उसकी पत्नी को मारने के लिए उन्होंने गुंडे भिजवाए थे। उनके सारे गुंडे अचानक गायब हो गए और फिर कृषा को मारने के लिए उन्होंने उसे घर पर इन्वाइट किया था। युग ने कृषा के लिए बनाया गया खाना जबरदस्ती पिया को खिलाकर उसकी आंखों के सामने उसकी जान ले ली थी। जैसे जैसे तेज सिंह सब बता रहा था, वो आदमी आईपैड पर कुछ कर रहा था। उसने स्क्रीन को जफर सिद्दीकी की तरफ दिखाकर कहा, लगता है इसकी पूरी तरह खिसक गई है, ये उसकी पत्नी को मारने चला था, वो लड़की माफिया प्रिंसेस है, उन 7 पड़ावों तक पहुंचने का रास्ता जिससे कोई भी इस माफिया वर्ल्ड का किंग बन सकता था, ये उस लड़की को मारकर सबके सपनों पर पानी फेरना चाहता था। तेज सिंह राणावत अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा था, उसे पूरी बातें नहीं पता थीं, लेकिन सिद्दीकी के आदमी की बात सुनकर उसे साफ हो गया था कि ना तो युग और ना ही कृषा कोई नॉर्मल इंसान थे। सिद्दीकी ने तेज सिंह की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, किसी को पता तो नहीं तुमने उन दोनों पर हमला करवाया है? वैसे तो वो खुद ही काफी है तुमसे निपटने के लिए, और तुम्हारी बेटी को मारकर उसने ये साबित भी कर दिया। वरना उस लड़की के दादा को पता चलता तो घर के एक एक आदमी की लाश बिछा देता, और तुम इसी तरह बदला लेने की चाह में खुद भी मर जाते। तेज सिंह आगे कुछ कहता उससे पहले सिद्दीकी के पास खड़े आदमी ने कहा, चलो अब जाओ यहाँ से, गलती से भी किसी को पता चल गया तो हमारा बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा। कहाँ डेविल के खिलाफ आवाज़ उठाने चला था? तेज सिंह समझ गया था यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो वहाँ से वापस आ गया। बाहर आते हुए उसने अपने मन में कहा, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मेरी बेटी की मौत का बदला मैं लेकर रहूँगा। युग राणा से ना सही, उसकी पत्नी से ही सही। तेज सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था, उसकी भी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन कुछ तो पहुँच थी, और उसने उस पहुँच के चलते अपने विश्वासपात्र आदमियों को राणा मेंशन पर नज़र रखने के लिए भेज दिया था। पार्टियंस